श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी की, श्री श्री राधा मदन मोहन जी ललिता विशाखा देवी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज के हम इस कथा सत्र में श्री वृंदावन के विषय में चर्चा करेंगे, सुबह और शाम, आधा सुबह और आधा शाम। तो सबसे पहले हम अभी भी यहाँ पर भी वृंदावन धाम में हैं। ऐसे प्रकार के वृंदावन धाम इतिहास में बहुत जगह पर कई बार किए गए हैं। द्वारका में ऐसा वृंदावन धाम एक बार बसाया गया था, जब श्री कृष्ण द्वारका में बहुत ज़्यादा वृंदावन के विषय में व्याकुल हो गए थे, तो एक वृंदावन की प्रतिकृति वहाँ पर खड़ी कर दी गई थी और कुछ देर कृष्ण को उसमें बहुत आनंद आया। जब ही सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी रामकेली में थे, रामकेली तो बंगाल के पास में है, वृंदावन से बहुत दूर है, लेकिन वो अपने घर पे रोज़ श्रीमद् भागवत की कथा किया करते थे। तो उन्होंने पूरा श्री वृंदावन हमारे अपने घर पे बनाया था, घर पे यानी अपनी जमीन पर, राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन यमुना वृंदावन धाम बारह वन, ये सब उन्होंने अपने लैंड पर प्रकट किए थे और वहीं पर वो रहते थे वृंदावन के भाव से। ऐसे कई आचार्यों ने श्री वृंदावन धाम को स्थापन किया है और आचार्यों ने आदेश भी दिया है कि विश्व में जगह जगह पर ऐसे प्रतिकृति वृंदावन जो है वो प्रतिष्ठापित करने चाहिए, ताकि लोगों को अपने घर के पास ही श्री वृंदावन धाम का आनंद मिले। जब श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की तो उन्होंने न्यू वृंदावन स्थापन किया अमेरिका में, वेस्ट वर्जीनिया जो पिट्सबर्ग के पास में है, और वहाँ पर उनके पास मेरे ख्याल से 3000 एकड़ जगह थी, 3000 एकड़ जगह पे 7 पर्वत भी थे उसके अंदर। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ पर हमको वृंदावन स्थापन करना है, वृंदावन स्थापन करना है, यमुना जी होनी चाहिए, राधा कुंड श्याम कुंड बरसाना नंदगांव सब कुछ होना चाहिए। तो जब वो बता रहे थे तभी जो सुन रहे थे उनके डिसाइपल्स शिष्य, उनको लग रहा था कि प्रभुपाद जी क्या कहते हैं उसको, सैनिटी, सैनिटी मतलब क्या, व्हाट डू यू से सैनिटी हिंदी, मतलब उनका दिमाग सही नहीं है, दिमाग अपनी जगह पर नहीं है। जब व्यक्ति बुढ़ा होता है ना तो वो इनसेन हो जाता है, यानी बुढ़ापे के भी परिणाम से उसका दिमाग जो है वो तर्क का विचार नहीं करता है, अतर्क का विचार करता है। तो उनको लग रहा था कि प्रभुपाद जी ऐसे ही बहुत वृद्ध हो गए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं जो उनको लग रहा है, लेकिन जो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है वो होने के लिए। लेकिन कुछ ही समय बाद प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार वहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रकट हो गई। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा ये जो पर्वत है ना इसका ऊपर का हिस्सा काट दो और वहाँ पर एक मंदिर बनाओ। इसलिए कह रहे हो बच्चे कैसे होते हैं, खेल खेल में यहाँ से वहाँ महाराष्ट्र राज्य यहाँ से उठा के यहाँ रख देते, होता ना मैप पूरा, तो मध्य प्रदेश को निकाल देते पूरा, ऐसे मध्य प्रदेश को उठा के यहाँ रख रहे हैं। उस तरह से प्रभुपाद जी ने कहा था कि इस पर्वत का टॉप जो है काट दो और वहाँ पर फ्लैट जगह बनाऊँ और वहाँ पर मंदिर बनाऊँ, और आगे जाकर ऐसा हुआ एक्चुअली। तो जिन लोगों को लग रहा था कि प्रभुपाद जी ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, उनको पता चला कि प्रभुपाद जी ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और अपने साक्षात्कार अनुभूतियों के साथ बोल रहे हैं, और उनको पहले से ही वो दिखाई पड़ रहा है जो हम नहीं देख रहे हैं, आगे प्रकट होने वाला है, वो पहले से उनको दिखाई पड़ रहा है। ऐसे शुद्ध भक्त की दृष्टि होती है। जैसे प्रभुपाद जी एक बार भारतीय विद्या भवन में प्रवचन के लिए आए थे, गिरगांव चौपाटी के पास, विल्सन कॉलेज है ना उसके पास, और अभी भी वो पत्थर की बिल्डिंग ब्रिटिशों के ज़माने की वहाँ बनी हुई है। तो वहाँ से लेक्चर देके जब सीढ़ी से उतर रहे थे तो सामने गली है और सीधी गली जाती है बाबुलनाथ में, रोड एंड होता है तो बाबुलनाथ जी का मंदिर आता है, फेमस बहुत प्राचीन मंदिर है बाबुलनाथ, वालुकेश्वर ऐसा भी नाम है उसका, जो बालू से बना हुआ शंकर जी की पिंडी है। तो उन्होंने वहाँ पर अपने डंडा उठाया, बोला यहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए, इस्कॉन का मंदिर होना चाहिए। केवल ऐसे जाते जाते बोल दिया ऐसे। श्याम सुंदर प्रभु उनके साथ में थे और वो करीब 75-76 का समय होगा, और बिल्कुल 11 साल के बाद में 87 में वहाँ पर मंदिर का आरंभ हुआ, और आज वहाँ पर राधा गोपीनाथ मंदिर है ना। तो शुद्ध भक्त जो कहते हैं वो पहले देखते हैं, उनको दर्शन होता है भविष्य का, जो आम आदमी को दर्शन नहीं हो रहा है, और फिर वो दर्शन जब करते हैं और जब बोलते हैं क्या होना चाहिए, फिर उनकी इच्छा से वो कृष्ण उनको प्रकट कर देते हैं। वो साधारण मंदिर नहीं हुआ, ऐसा मंदिर हुआ जो विश्व में सबके लिए आदर्श बना, सब लोग वो मंदिर में जो हो रहा है उसका फॉलो कर रहे हैं कि तत्व प्रिंसिपल्स क्या करके छोटी जगह पे इतना लोगों ने भक्ति को स्वीकार किया। तो वैसे ये जो GEV गोवर्धन कृषि वाणिज्य क्षेत्र, गोवर्धन इको विलेज जो है, वो उसी भावना से बनाया गया है। क्योंकि प्रभुपाद जी केवल ऐसी इच्छा नहीं थी केवल वेस्ट वर्जीनिया में पिट्सबर्ग में एक ही हो जाए, उनको विश्व में कई जगह पर ये करने की इच्छा थी। आज भी हंगेरी में और एक नव वृंदावन है, सिंबॉलिक हाँ मतलब लाक्षणिक कह सकते हैं उसको, ऐसा एक जगह बनाई है पूरी जंगल में और बोर्ड लगाए हैं, निधि वन, वृंदावन, भंडीर वन, बरसाना, नंदगांव, यमुना, ऐसे वो भाव से वहाँ पर परिक्रमा करते हैं। और उसको समझाने के लिए पूरी किताब लिखी है शिवराम महाराज ने, नव वृंदावन महिमा, NVM, उसके कुछ 10 इतने इतने बड़े खंड हैं और कुल मिलके 600 कथाएं हैं उसके अंदर, अद्भुत कथाएं। तो उनका उनकी योजना ऐसी है कि आप वहाँ जाइए और जहाँ बोर्ड लगा है निधिवन वहाँ जाके बैठ जाइए, वो किताब खोलिए और पूरी निधिवन की लीला पढ़ लीजिए, तो आप निधिवन में ही पहुँच जाएंगे। फिर बरसाना जहाँ लिखा है वर्ड उसके नीचे बैठ जाइए और बरसाना का चैप्टर खोलिए, सब वॉल्यूम का इंडेक्स लिखा हुआ है उसको खोलो, और फिर आप सारी कथाएँ पढ़ो बरसाने की, आपको सारा चीज़ वहाँ पर, पीली पोखर, प्रेम सरोवर, भानोखर, सांकरी कोर, चार प्रकार के पर्वत, मंदिर, सब कथा मिल जाएगी और आप भावना से वहीं पहुँच जाएंगे। तो वो थोड़ा सूक्ष्म रूप में बनाए हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। एक मूर्ति स्थापन करना बहुत आसान है, गए जयपुर गए, 1.5 लाख का मूर्ति फिक्स कर दिया, डिज़ाइन दे दिया उनको, मूर्ति बनाया, उसको ट्रांसपोर्ट किया, 1-2 दिन का कार्यक्रम होगा तो पूरा भगवान मंदिर स्थापन हो जाता है, प्रतिष्ठापना हो जाती है। लेकिन धाम स्थापन करना आसान काम नहीं है, वृंदावन, फिर जमुना, फिर गोवर्धन पर्वत, फिर सारे 12 वन, फिर गोवर्धन के आसपास सरोवर, कुंड, तालाब, बहुत बड़ा विस्तारित काम है ये, 7 मंदिर, फिर इमली तला, फिर राधा वल्लभ, फिर बांके बिहारी, कितनी चीज़ें हैं वृंदावन में, तो असंख्य चीज़ें हैं। और दूर दूर तक काम्य वन है, भांडीर वन है, उस तरफ बेल वन है, इस तरफ मानसरोवर है। तो ये सब स्थापन करने के लिए एक तो बहुत बड़ी जगह चाहिए, और प्रत्यक्ष आंखों के सामने प्रकट करने के लिए एक तीव्र इच्छा चाहिए, एक दूरदृष्टि चाहिए, विजन चाहिए, विजन, और फिर उसको उतारने के लिए विजन को लोग चाहिए, समर्पित लोग जो उस विजन को खरीद सके। दूरदृष्टि होने से काम नहीं होता है, दूरदृष्टि को लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी शक्ति होनी चाहिए, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति के बिना, शक्तियाँ आवेशित हुए बिना ये सब प्रकट नहीं होता है। तो शुद्ध भक्त कौन है? वो ऐसे लीडर है जो उनको बनाना है वो ऑलरेडी उनके आंखों के सामने रेडी है, पूरा उनके मन में वो दृष्टि जो विजन है दृश्य वो रेडी है। इसलिए वो बता सकते हैं यहाँ पर नहीं होना चाहिए, थोड़ा दीवार कम करो, यहाँ बढ़ा दो, साइड में करो, बीच में रखो, यहाँ से दरवाज़ा बनाओ, क्योंकि उनके मन में पूरा वो फिट है। जैसे ये ऑडिटोरियम बना है ना, ये किसी के मन में पहले ऑडिटोरियम तैयार था, फिर उन्होंने वो समझाया कि ऐसे ऐसे है, फिर वैसे वैसे बनाऊँ कि ऐसे ऐसे बीच में खंभे होने चाहिए, फिर आड़े आड़े कुर्सी खिड़कियाँ होनी चाहिए, ऊपर एक कंट्रोल रूम होना चाहिए। तो ये शुद्ध भक्ति की दूरदृष्टि है। जब प्रभुपाद जी बोल रहे थे ना, इस पहाड़ को यहाँ से उठा दो, टॉप निकाल दो और आप मंदिर बना दो, तो उनको ऑलरेडी मंदिर वहाँ दिख रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये टॉप काट दो यहाँ से, और वो कटवाया गया। इसलिए हर एक मनुष्य के जीवन में एक कम से कम शुद्ध भक्त का आश्रय होना जरूरी है। बिना शुद्ध भक्त और संत के आश्रय से हमारा जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमको खाली जो आँखों को दिखता है वही दिखता है, उसके परे क्या है वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, और भगवान का धाम उसके परे होता है। यहाँ तक वृंदावन में एक्चुअल जाएंगे आप, आज के वृंदावन मथुरा में जाएंगे, मथुरा से 12 किलोमीटर आगे वृंदावन में प्रवेश करेंगे ना, तो भी आपको क्या दिखेगा? पहले भीड़ दिखेगी, टेम्पो रिक्शा ये सब, टै 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 टों टों, सब बंदर दिखेगा, कीचड़ दिखेगा, सुअर दिखेगा बीच में, उसमें ब्रजवासी आपको चीटिंग कर रहे हैं वो दिखाई पड़ेगा, सब दुकान बीच में, कहीं मंदिर में गए तो पंडा लोग आपको परेशान कर रहे हैं, दान दे दो, गाय के लिए दे दो, चावल के लिए दे दो, बुड्ढों के लिए दे दो, औरतों के लिए दे दो, विधवाओं के लिए दे दो, तो आपको लगेगा कि क्या है सब, किधर दिव्यता है इसके अंदर। फिर थोड़ा आप सेटल हो जाएंगे, अपने रूम में जाएंगे, थोड़ा सा परेशान होकर रूम में बैठ जाएंगे, उसके बाद आपको फ़ोन आएगा कि अभी आपको 9 बजे निकलना है, गुरु महाराज आपको दर्शन कराने लेके जाएंगे। फिर उनके साथ कीर्तन करते करते हम बाहर निकलते हैं, और फिर वो जब बताते हैं वृंदावन के बारे में, तो जो आपको दिख रहा है ना वो सारा सीन हट जाता है आंखों के सामने से, जिससे आप परेशान हो रहे थे कुछ समय पहले, और आपका मन जो है वो यहाँ के लेवल से ऊपर उठकर धाम की कथा सुनकर कान के माध्यम से धाम का दर्शन करने लगता है। पहले हम आँखों से, सीमित आँखों से धाम का दर्शन कर रहे हैं, अभी कान के माध्यम से गुरु जी की दिव्य वाणी से जो वो देख रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि से, वो आपको श्रवण माध्यम से वो दर्शन करा रहे हैं। तब आपको लगेगा वाह कितनी सुंदर बात है, इतना सुंदर, इतना सुंदर वृंदावन है। हाँ, तो एक माया का पर्दा है जिसके इस तरफ आपको कीचड़ दिखाई पड़ रहा है, बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, आश्रम दिखाई पड़ रहे हैं, बंदर दिखाई पड़ रहे हैं, सब कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, और जब गुरुजी की वाणी सुनते हैं तो वो माया का पर्दा हट जाता है, और फिर जो दिव्य वृंदावन है उसका दर्शन होता है, और वो दिव्य वृंदावन केवल गुरुजी की कृपा से ही, संतों की कृपा से ही हो सकता है। हाँ, क्या है वो? तद्विद्धि प्रणिपते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शिनः। जो उन्होंने देखा है वो आपको अपनी शक्ति से आपको दर्शन दे रहे हैं, उसका हमको नहीं दिख रहा है वो, लेकिन उनकी कृपा से जो उन्होंने देखा है वो हमको दिखा रहे हैं वो, तभी हमको दिखाई पड़ता है। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमको वो सब चीज़ दिखाई पड़ेगी जो कुछ वैल्यू की नहीं है। तो धाम दर्शन इस प्रकार से होना चाहिए, कानों से ही होता है वो, और कथा में ही होता है। जब धाम में किसी भी जगह बैठकर गुरुजी कथा करते हैं, संत कथा करते हैं, तो कथा के माध्यम से, उनके पवित्रता के माध्यम से वो धाम वहां प्रकट हो जाता है, और हम भी उसको अनुभव करते हैं, जो उतने योग्य नहीं है, लेकिन उनकी कृपा से, उनकी वाणी की शक्ति से हम भी उसका अनुभव करते हैं, और तब हृदय की शुद्धि हो रही है ऐसा भी अनुभव करते हैं कि हृदय पवित्र हो रहा है। और एक धाम की विशेषता है, होकर भी दिखाई नहीं पड़ेगा अगर वो पवित्रता नहीं है, और पवित्र है तो है भी, समझो उस क्षेत्र में, समझो फॉर एग्जांपल नीम गांव, जहाँ पर निम्बार्क आदित्य रहे थे, और कभी कभी वहाँ पर गुजर लोग रहते हैं और सब डकैत डकैती करते हैं, पूरा गांव के गांव डकैत। सर गोवर्धन की आप गली में जाएंगे ना तो पूरे गुर्जर लोगों का ही बस्ती है, वहाँ कोई गुजरेगा तो उसको लूटते हैं वो लोग आज भी। तो हम लोग सब लोगों को सावधान कर देते हैं, यहाँ मत जाना, उधर मत जाना, भक्तों के साथ ही जाना, दिन में जाना, रात में मत जाना, अकेले नदी में मत उतरना, किसी के साथ जाना, मतलब बहुत सारी कॉशन बताना पड़ता है, सावधानी चेतावनी देनी पड़ती है। तो जिस ब्रज के अभी ब्रज में कौन सा ऐसा क्षेत्र है भगवान ने लीला नहीं किया है, पूरा ब्रज का, ब्रज मैंने कल बताया ना कितना बताया था, 66,000 लक्ष, 660 अब्ज लीला स्थलियां हैं, और वो भी कितने एरिया में है, 235 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में अंदर है, ज्यादा बड़ा नहीं, 168 स्क्वायर माइल्स, 84 कोस, 168 स्क्वायर माइल्स, 235 स्क्वायर किलोमीटर्स, 137 वन, ऐसे वृंदावन बना हुआ है, मतलब हर कण में लीला है। लेकिन सब जगह हमको वो लीला का अनुभव नहीं होता है, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ जगह पर लोकल लोग और बाहर के लोग आकर शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, डकैती करते हैं, खून खराबा करते हैं, लूटमार करते हैं और रहते भी हैं वहां पर। तो धाम का पावर क्या है? धाम केवल जगह नहीं है, धाम एक व्यक्ति है, धाम इज अ पर्सन, धाम इज लाइव, धाम चलायमान है। धाम बहुत ही, हम कैसे होते हैं, कभी नाराज है, कभी खुश है, कभी मूड में रहते हैं, कभी मूड में नहीं रहते, कभी बहुत उत्साह में रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, कभी धीरे चलते हैं, हम कैसे अपना भाव बदलता है ना हमेशा, इमोशंस आर ऑलवेज चेंजिंग। वैसे धाम का जो धाम पुरुष है वो भी ऐसा रिस्पॉन्सिव है, प्रतिसाद देने वाला है। और जैसे भगवान कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते त्याम ताम तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा, कि जैसे आप हो और आप जैसे अपने आप को मेरे लिए प्रस्तुत करते हो वैसे ही मैं आपको प्रतिसाद देता हूँ, आप हंसेंगे तो मैं हंसता हूँ, आप श्रद्धा से आएंगे तो मैं श्रद्धा से आपको मेरा दर्शन दूंगा, आपको आप अगर अश्रद्धा दिखाएंगे, अविश्वास दिखाएंगे तो मैं मेरा दर्शन नहीं देता, है ना। तो वो धाम पुरुष श्री कृष्ण है, वो धाम के रूप में वहां पर रहते हैं, और जिस जगह पर पाप कृत्य होते हैं उस जगह पर धाम अपना गौरव छुपा लेता है। जैसे मैं अगर समझो, मेरे पास अभी बहुत कथाएं आपको बताने का मूड है और आप में से किसी को सुनने का मूड नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा उसको, समझ में, सिंपल। और आप में से सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं लोग तो मैं एक बताने का आऊंगा और चार बता के जाऊंगा, क्यों? मेरे पास तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन ये अंतर क्यों है? क्योंकि एक बार आपको सुनने का मूड ही नहीं है इसलिए कोई कथा नहीं हो रही है, और दूसरी बार आपको बहुत सुनने का मूड है इसलिए कथा हो रही है, एक से ज़्यादा हो रही है। तो कैसा है वो, आपने जो भाव लाया उसका रिस्पॉन्स मैं दे रहा हूँ, सिंपल, वेरी सिंपल। तो वैसे ही अगर धाम में आप भक्ति भाव से रहते हैं तो धाम अपना जो बुझा हुआ कमल है वो खोल देता है, उसकी लीलाओं को प्रकट करता है, उसका महात्म्य को, गौरव को प्रकट करता है। इसलिए आप वृंदावन भी जाएंगे और सिगरेट पीते पीते ऐसे घूमेंगे, खा शराब पियेंगे, घूमेंगे इधर उधर, क्या अच्छा नज़ारा है, बाप पर्वत अच्छा है, बहुत लंबा है, जो थोड़ा अलग साइड का पर्वत है, ऊपर नहीं है ऐसा आड़ा पर्वत लंबा, तो बस उतना ही दिखेगा आपको, फिर बंदर देखेंगे, फिर सुअर देखेगा, फिर गाय देखेगी, वापस लौट के आएंगे। लेकिन वो सब सारे नियम पालन करके भक्ति भाव में चरणों में लोटपोट होते हुए वंदन करते हुए जाएंगे तो सारा रहस्य खुल जाएगा, ये धान निवर्तन कुंड है, यहाँ पर क्या लीला हुई थी, भगवान ने क्या सिखाया यहाँ पर, वो सब आपको पता चलेगा। तो इसलिए उसी तरह से जब आप यहाँ आएंगे गोवर्धन इको विलेज में और इसको उस भाव से देखेंगे कि साक्षात भगवान का धाम है, तो यहाँ पर भी आपको प्रत्यक्ष वृंदावन में जो अनुभूतियाँ होंगी यहाँ पर भी हो सकती है। और आप सोच के आएंगे, अरे ये तो रेप्लिका बनाया है, मतलब 1/3 साइज का एकदम वैसे हुबहू बनाया है, कोई कलाकार था अच्छा उसने बना दिया, तो आपको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा, आप वाह वाह करके जाएंगे, वाह क्या एग्जैक्टली बनाया, मैं वहां पर भी गया था, अरे सेम टू सेम है, एंट्रेंस भी सेम है, मूर्ति भी सेम जगह पर, सब कुछ सेम सेम है, लेकिन ये रेप्लिका है, प्रतिकृति है। तो प्रतिकृति के भाव से आएंगे तो प्रतिकृति नजर आएगी आपको, भगवान नजर नहीं आएंगे। और साक्षात भाव से आएंगे आप, श्रद्धा से आएंगे, तो वृंदावन धाम में आपको जो अनुभूति हो रही है वही यहाँ पे हो सकती है। इसके पीछे भी शुद्ध भक्त हैं, जिसकी जिसकी दूरदृष्टि, जिसका साक्षात्कार, जिसका निश्चय और जिसकी प्रेरणा इसके पीछे है। इसलिए जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं परमानेंट, और जो लोग यहाँ आकर कुछ दिन रहते हैं लंबे समय के लिए, एक दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, जैसे भी, और कुछ लोग बाहर से आकर यहाँ बसे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं, उन सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये साक्षात वृंदावन धाम है। हो सकता है कुछ लोग नौकरी करते होंगे, कुछ लोगों को पगार मिलती होगी, कुछ लोग ब्रह्मचारी बनकर निस्वार्थ सेवा करते होंगे। हम उसमें कोई भेदभाव मत समझना, करें हम पगार लेते हैं वो नहीं लेते हैं, अरे वो ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। डू द नीडफुल इज इम्पॉर्टेंट। अल्टीमेटली भगवान एंड में आपका ये देखेगा, नहीं आपने कितना पगार लिया, आपने नहीं लिया, ऐसा नहीं होता। एंड में भगवान देखेंगे भाव कितना निर्माण किया आपने प्रेम का, चाहे वो पगारी गृहस्थ हो या बिन पगारी ब्रह्मचारी हो, भाव कितना लोगों ने ग्रहण किया और कितना प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त करने के योग्य कितने बने, वही देखा जाएगा। कौन से सिल्क के वस्त्र पहने कि गेहूं रंग के वस्त्र पहने कि व्हाइट पहने, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सब तो बाहरी कन्वीनियंस है खाली, इट्स ओनली एक्सटर्नल कन्वीनियंस। तो ये सब जो बात मैं कर रहा हूँ वो सब भूमिका है धाम में आने की, प्रवेश करने की, धाम में रहने की, धाम में किस प्रकार से, किस भाव से रहना है, कैसे धाम से मैक्सिमम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना है, ये उसका फॉर्मूला है। बहुत सारा पैसा होने से, बहुत लंबा समय यहाँ रहने से भगवान का दर्शन साक्षात्कार होगा ऐसी गारंटी नहीं है। और किसी कोने में ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए जमीन पर सोकर भी आपको भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, अगर आपका अप्रोच करने का तरीका जो है वो सही होगा तो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो भगवान देखते हैं वो है भाव। भगवान को बाकी कुछ जरूरत नहीं दिखने, क्योंकि धन भी उन्होंने दिया हुआ है, बिल्डिंग भी उन्होंने खड़ी की है, लैंड भी उनका है, पेड़ भी उनके है, वातावरण भी उनका है, एटमॉस्फेयर भी सब उनका है, पहाड़ भी उनका है, वहाँ सूर्योदय होता है वो उनकी मर्जी से होता है, हाँ गैया भी रहते हैं उनकी इच्छा से, सब कुछ उनका ही है। हमारा क्या है इसके अंदर, हमारा कुछ नहीं, हम भी परावलंबी है, उसी पर निर्भर है हम लोग। लेकिन भाव हमारा है, वो गलत रखना है, सही रखना है, क्रिटिकल मतलब क्या निंदा करते हुए या क्रिटिसाइज करते हुए रखना है, या सराहते हुए रखना है, अप्रिशिएटिव मूड रखना है, थैंक यू मूड रखना है, धन्यवाद का भाव रखना है, नम्रता का भाव रखना है, प्रार्थना का भाव रखना है, ये सब हमारे ऊपर है। और जब प्रार्थना का, नम्रता का भाव रखेंगे तो भगवान सब कुछ ऐसा खोल के प्रकट करेंगे। और क्रिटिकल मूड रखेंगे, अरे ये नहीं मिला, अरे वो सही नहीं था, अच्छा नहीं था, अभी क्या वातावरण, अभी अक्टूबर में कितनी गर्मी होती है, यहाँ पर कैसे रहेंगे अक्टूबर में, और क्या है वो दिसंबर जनवरी में रूम ही नहीं मिलता है, सब परदेश से आकर रहते हैं, कभी आकर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, किसके लिए बनाया है, ऐसा अगर भाव रखेंगे तो कभी भी आओ, सर्दी में आओ, गर्मी में आओ, बारिश में आओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, एक थोड़ा सा अच्छा पिकनिक हो जाएगा बस। और पिकनिक करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो तो दिल को और आरोग्य को रिझाने के लिए पिकनिक बनाते हैं। यात्रा होती है जो उसमें भगवान की अनुभूति होती है। पिकनिक में हम केंद्र स्थान में होते हैं, मुझे क्या मिलेगा, अच्छा खाना मिला क्या, रूम अच्छी मिली क्या, एसी अच्छा था, बाकी सुविधा कैसी थी, सब कुछ ठीक था क्या, रास्ता ठीक था जाने आने के लिए, गाड़ी मिली क्या टाइम पे, गोल्फ कार्ट, ये सब पिकनिक, मतलब मैं आई एम इन द सेंटर। और यात्रा में कौन सेंटर में होता है, भगवान। और मैं किधर भी नहीं होता हूँ, यात्रा में केवल भगवान सेंटर में होते हैं, और उन्हीं को देखकर उन्हीं के लिए सारे कार्य किए जाते हैं, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, अनुभूति करने के लिए प्राप्त सारे कार्य होते हैं। तो आप यहाँ पर पिकनिक कर रहे हैं कि यात्रा कर रहे हैं, ये आपको ही तय करना है, चाहे कितने भी दिन रहो। ये सब धाम में जाने के पहले हम लोग सब लोगों को बताते हैं। वृंदावन में जा रहे हैं ना, बहुत लोग ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, रोड से जाते हैं, तो सब कुछ बताना पड़ता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन से रूम में रह रहे हैं, कितनी सुविधा में रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, कितना प्लान में था, कितना फेल हो गया, कितना मिला, ये सब कैलकुलेट करने के लिए धाम यात्रा नहीं होती है। और एक इम्पोर्टेंट बात भी मुझे कहते कहते याद आई, वो ये है कि धाम में वही चीज देखने को मिलती है जो हमको भगवान दिखाना चाहते हैं। अब समझो मैं आपके घर पे आया, समझो गाँव में गया, आपका घर में बहुत 10-12 घर का कमरा बंगला है आपका, बहुत सारी खेती वेती गार्डन भी है, लेकिन जब मैं आपके घर पे आऊँगा तो आप तय करेंगे मुझे कौन से रूम में रखना है। मैं नहीं कहूँगा प्रभु जी मैं जब आऊँगा तो आपका बेडरूम खाली करना, मैं आपके बेडरूम में रहूँगा, ऐसा नहीं होता है। मैं आऊँगा प्रभु जी कहाँ जाना है, बोले ये कमरे में जाना है, वहाँ पर रहना है आपको, ये आपका बाथरूम है, ये आपका गैलरी है, यहाँ कपड़ा सुखा दो, यहाँ रहो, यहाँ पर डाइनिंग के लिए आ जाओ। जैसे आपके घर पर आया था, है ना, आपने तय किया था ना मैं कहाँ रहूँगा और कहाँ पर भोजन पाऊँगा और कहाँ घूमने जाना है मुझे। लंदन की बात कर रहा हूँ, रिक मैंसवर्थ। सो वही तरीका होता है, जो धाम का मालिक होता है वही तय करता है आपको क्या क्या दिखाना है। तो हमको डिमांड नहीं करना चाहिए, अरे प्रभु जी आज तो लिस्ट में इतने स्थान थे, अभी 4 ही दर्शन किए आप। मुझे गुरु महाराज ने एक बार डांटा था अच्छी तरह से, क्योंकि यात्रा का ऑर्गेनाइजर मैं था 1994 में, उस समय 425 लोग यात्रा में थे, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या थी, 425, 8 बसेस वर देयर यू नो, और उसका मैं ऑर्गेनाइजर था, और 8 बसेस में को वॉकी टॉकी नहीं था, कुछ नहीं था, हम लोग जा रहे हैं भाग भाग के, ऐसे फिजिकल जाके लोगों को बोल रहे हैं बस चालू करो, बस चालू करो, बस चालू करो। मोबाइल भी नहीं था कि भाई किसी को बताया राइट टर्न लिया क्या, लेफ्ट टर्न लिया क्या, रुक जाओ मैं आ रहा हूँ पीछे से, हम लोग 2 बसें पीछे फंस गई है कीचड़ में, ऐसा कुछ नहीं था। और 8 दिन बढ़िया यात्रा हुई बहुत अच्छी तरह से, और 8वें दिन जब लास्ट दिन यात्रा करके हम फाइनल लौट के आ रहे थे, तो गुरुजी ने अपना कार छोड़ दिया और मेरे बस में आ गए। मैं एक बस में था, मेरे बाजू में आके बैठ गए, पहले मेरा कैप निकाला, बोला कैप क्यों पहन रहे हो, इतना अच्छा सर मुंडवा के रखा है, सर से हाथ घुमाया बहुत देर तक, बड़ा ही अच्छा लगता है बहुत। कैप निकाल दिया, फिर पूछा कैसा लगा आपको यात्रा, तो मैं एकदम मैनेजमेंट मोड में था ना पूरा, आई मीन मैनेजमेंट मोड। तो मैंने गुरु जी को बताया, देखो महाराज जी इतना अच्छा प्लानिंग किया था हमने, हर दिन में कितने अच्छे स्नान का परफेक्ट प्लानिंग किया था, अगर लोगों ने हमारा कहा ठीक से माना होता ना, पंक्चुअल रहते हुए, समय के पाबंद रहते हुए अगर माना होता, तो हम लोग हर दिन 2-2 स्थान मिस नहीं करते। मुझे लगा था कि मैं एकदम एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस्ड ओपिनियन, रियलाइज्ड ओपिनियन दे रहा हूँ, और तो बड़े गर्व से बता रहा हूँ। तो सुनते सुनते गुरु जी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया, हाँ जैसे हंसते हंसते आए थे वो सब बंद हो गया। मुझे लगा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो एकदम गंभीर होकर बोले, देखो जब भी धाम में आते हो ना, क्या नहीं मिला इसके बारे में सोचना नहीं है, क्या मिला उसके प्रति धन्यवाद देना है आपको। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल व्हाट यू कुड सी एंड नेवर टॉक अबाउट व्हाट यू कुड नॉट सी, क्योंकि धाम के मालिक आप नहीं हो। जिस प्रकार से आप बोल रहे हो लगता है कि आप ही धाम के मालिक हो, और आप कुछ भी नहीं हो, धाम के मालिक श्री कृष्ण है, और धाम उनका घर है, निज धाम है उनका वो, उसमें तो कौन तय करेगा क्या दिखाना है उसमें से। अभी आपके घर पे आया, आपने मुझे अपना बेडरूम दिया, लेकिन वो बेडरूम में 4 कबर्ड में 2 कबर्ड अभी लॉक रखे, और 1 कबर्ड का एक साइड खुला करके रख, प्रभु जी आपका ये कपड़ा यहाँ रखो, तो आई कैनॉट आस्क यू वो कबर्ड में क्या है, वो क्यों लॉक रखा है, आई कैनॉट आस्क यू, क्योंकि आपका घर है, आपका कबर्ड है, आपको क्या करना है आपकी मर्जी है, कौन सा कबर्ड का हिस्सा मुझे इस्तेमाल करने के लिए देना है वो आपकी मर्जी है, आई कैनॉट क्वेश्चन यू, इतना सा क्यों दिया, ज़्यादा क्यों नहीं दिया, कम क्यों दिया। भाव कैसे होना चाहिए कि मैं किसी के घर जा रहा हूँ जिसका मालिक ये व्यक्ति है, वैसे मैं धाम में जा रहा हूँ तो धाम के मालिक श्री कृष्ण भगवान है, और ये उनके कमरे हैं, काम्य वन, भांडीर वन, बेल वन, वृंदावन, ये भी जो भी कुछ है ये उनके कमरे हैं जहाँ पर वो लीला करते हैं, उसमें से कौन से कमरे में आपको घुमाना है वो उनकी मर्जी है। शायद इनके घर पे जाएंगे तो गोडाउन में आप नहीं लेके जाएंगे मुझे, वो नहीं लेके जाना है, बस ऊपर रहो आप, पहले माले पे घूमो। वैसे ही भगवान की इच्छा होगी, जो दिखाना है आपके योग्य वही रिवील करेंगे, बाकी सब कुछ हो, कभी ट्रैफिक जाम हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी बारिश ही आ जाएगी, ये कथा कैंसिल हो जाएगी, उधर कथा हुई ही नहीं जहाँ होने वाली थी, ये सब कुछ भगवान लीला करते हैं, और आपको जितना दिखाना है उतना ही दिखाते हैं। तो एक है भगवान की मर्जी, दूसरा है उस स्थान में अगर साधु ने तप किया है, भजन किया है, तो उस धाम का गौरव आपके साथ प्रकट हो जाएगा। ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जब आज भी आप मान मंदिर जाओगे, बरसाने की कुछ जगह पे जाओगे जहाँ पर वो परिवार और साधु महाराज 50-60 साल से वहाँ पर तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वहाँ जाते हैं आपको ऐसा अलग अनुभव आएगा, और कुछ कुछ स्थान ऐसे जहाँ जाएंगे तो आपको कुछ भी लगेगा नहीं, इट्स लाइक नथिंग। देखिए वो भी भगवान का धाम है, ये भी धाम है, लेकिन साधु की कृपा से उस धाम का महिमा साधु ने आम जनता के लिए प्रकट करके ही रखा है विद डिवाइन वाइब्रेशन। तो ऐसा ही वृंदावन धाम है। तो आप जीव में आए हैं, आपका स्वागत है, आप रह रहे हैं, आपका भी स्वागत है, लेकिन सदैव ऋणी भाव में रहना, थैंक यू भाव में रहना। जब हम ग्रेटफुल रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, तो ठाकुर जी को प्रेरणा मिलती है कि और इनके लिए प्रकट किया जाए, और अपना जो स्टॉक में है निधि वो सब प्रकट करते हैं। वो उसका चावी है कृतज्ञता, नम्रता, सहनशीलता, आदर पूर्णता, भक्तों के प्रति सम्मान, भक्तों के प्रति आदर। ये भावना जब होती है ना, अप्रिशिएटिव मूड होता है ना, सराहनीय भावना होती है, तब भगवान को आनंद आता है। भगवान और किसी चीज़ से प्रसन्न नहीं होते, प्रभावित नहीं होते आपके धन से, आपकी विद्या से और आपके पोजीशन से, भगवान प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो सब उनका ही दिया हुआ है। भगवान प्रभावित होते हैं आपके भाव से, वो खुद का है आपका, आपके खुद की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो। और जब वो हम पैदा करते हैं तो भगवान फिर हमको देने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, लुटा देते हैं, क्या देते नहीं हैं, जैसे राधा रानी और कृष्ण देते नहीं हैं, बरसाते हैं। देना एक होता है और वर्षाव करना दूसरा होता है। वो बरसाने वाली बरसाते रहती है, रस बरसाने वाली बरसाने वाली ऐसे ब्रज में गीत है, रस बरसाने वाली मतलब राधा रानी जो रस बरसाने वाली है इसको कहते हैं श्लेष अलंकार, पन पन कहते हैं उसको, एक शब्द के दो अर्थ होते। तो यही मैं कहना चाहता हूँ बार बार कि जहाँ पर भी हम जाएंगे, अगर तथाकथित वो धाम भी नहीं है, लेकिन अगर आपके दिल पे अगर धाम बसा हुआ है तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ धाम का दर्शन करेंगे, कण कण में कृष्ण को देखेंगे। तो अगर हम धाम में जा रहे हैं, अभी तीसरी बात बता रहा हूँ, हाँ एक बताया धाम की महिमा प्रकट कैसे होती है, और धाम के अधिष्ठाता कौन है, वो क्या दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं। और तीसरी बात यह है कि जब धाम में जाते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं या परमानेंट रहते हैं, धाम को हृदय में ग्रहण करना चाहिए, हृदय में बसा लो उसको, जो भी आपको दिख रहा है वो भी बसा लो, जो भी आप सुन रहे हैं उसको भी बसा लो, जो भाव को आप ग्रहण कर रहे हैं, किसी के प्रेम ग्रहण कर रहे हैं, किसी का प्रेम का आदान प्रदान ग्रहण कर रहे हैं, कोई आपको प्रसाद खिला रहा है, कोई आपको बुला रहा है, कोई आपको सम्मान दे रहा है, कोई माला पहना रहा है, भगवान की महाप्रसादी दे रहा है, कोई जमुना जी की आरती करने के लिए मौका दे रहा है, ये सबके प्रति जो ऋणी भाव होता है ना, उसको हृदय में ग्रहण करो। और फिर जब यहाँ से कभी जाना पड़ा बाहर तो सबको याद करो, उस समय जो आपने वहाँ बिताया उसको याद करो कि कैसे हमको गुरु महाराज ने यहाँ पर सेवा करने का मौका दिया, रहने का मौका दिया, अवसर दिया अनुभूति करने का। तो इसको कहते हैं चिंतन और मनन, यानी अभी आप वहाँ पर नहीं हो, अभी उसमें से कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है जो पहले आपने की थी यहाँ पर, अभी आप उस पर जैसे गाय कैसे पहले खाती है बाद में आप बाहर निकाल के उसको बैठ के आराम से चबाती रहती है, रवंथ करती है, हाँ वैसे हमको करना चाहिए। उससे धाम हमारे हृदय में पक्का स्थापित हो जाता है। चिंतन ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से जो आपने ग्रहण किया है वो दृढ़ हो जाता है। अगर चिंतन ही नहीं है, यहाँ आए वहाँ भागे, वहाँ से वहाँ भागे, वहाँ से वहाँ भागे, बस कुछ नहीं, नो मेडिटेशन, नो थिंकिंग प्रोसेस, तो क्या होगा, कुछ भी मन में नहीं बसेगा, फूल पाखरू की तरह, तितली की तरह, कैसे आ गए पीले फोर पीले फ्लावर पे, येलो फ्लावर पे, ब्लू फ्लावर पे, पिंक फ्लावर पे, हले दा रहे, बस किसी को भी ग्रहण नहीं कर रहे, ऐसे ही जाके वन बाय वन घूम रहे। तो आप परमानेंट रह रहे हो या कुछ समय रह रहे हो, जो भी आपको मिल रहा है उस पर आप चिंतन करते रहना। और कुछ समय के लिए मिल रहे हो तो आप बहुत डिफिकल्ट है, आपको मिल रहा है छोटा और बहुत समय बाहर रह रहे हैं तो ज़्यादा चिंतन होना चाहिए। यात्रा टू यात्रा, इन बिटवीन मेडिटेशन शुड बी देयर, यात्रा के पहले एंटिसिपेशन शुड बी देयर, प्रतीक्षा, उत्सुकता होनी चाहिए। धाम उसी से प्रकट होता है, बाकी धाम कितना ब्यूटीफुल है और क्या वो वृंदावन के मदन मंज के मंदिर के शिखर के ऊपर कितने कबूतर ने गंदगी बना के रखी है, अपना तो जीव में कितना अच्छा है, इतना स्वच्छ है, हो सकता है कुछ दिन के बाद में सब कुछ सेम हो जाएगा, बट आपका भाव अगर वही रहेगा तो आपको वो कबूतर का सफ़ेद रंग का कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप कबूतर के उसको देखने के लिए नहीं आए, आप राधा मदन मोहन जी को देख रहे हैं जो उसके अंदर विराजमान है। आज वो वृंदावन में है भी नहीं, वहां से करौली गए, लेकिन हम जाते हैं तो उनको ही भाव में दर्शन करते हैं, राधा मदन मोहन जी को। तो सारा धाम है वो भाव रूप है, भाव आपका है तो मैच हो जाएगा, आपको सब कुछ देखेगा, और भाव उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, विपरीत है, तो सब कुछ होते हुए आपको कुछ नहीं देखेगा, ऐसे ही घूम के आ जाएंगे, भीड़ देख के आ जाएंगे, कीचड़ देख के आ जाएंगे, और असुविधा को अनुभव करते आएंगे और कोसते 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 घर चले जाएंगे। व्हाट इज द गेन? देयर इज नो गेन। तो ये जो वृंदावन की हम बात कर रहे हैं अभी, तीन एक और थोड़ी बात बताता हूँ आपको कि धाम और तीर्थ में क्या अंतर है, किसी को पता है? एनीवन नोस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन धाम एंड तीर्थ क्षेत्र? धाम भगवान का निज धाम, यानी उसका खुद का घर है वो, जहाँ पर भगवान हमेशा निवास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अयोध्या भगवान राम का निज धाम है, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का निज धाम है, द्वारकाधीश भगवान का द्वारका निज धाम है, रंगनाथ जी का रंग क्षेत्र निज धाम है, और वृंदावन श्री कृष्ण का निज धाम है। लेकिन अयोध्या से जब राम निकले, चलते चलते वनवास करते हुए नासिक आए, दंडकारण्य, चित्रकूट आए, नासिक आए, वहां से चलते चलते पंपा सरोवर गए, वहां से आगे जाकर कन्याकुमारी गए, मतलब रामेश्वर गए, और वहां से सेतु बंद करके लंका गए, ये सब तीर्थ है। अपना धाम छोड़कर जब भगवान कहीं जाकर लीला करते हैं, वो परमानेंट रहते नहीं यहाँ पर, कुछ समय रहे ना उधर, 13 साल उधर रहे चित्रकूट में, 14वां साल दंडकारण्य में रहे, बाद में भटकते रहे 1 साल तक ढूंढते ढूंढते, फिर लंका पहुँचे, फिर वापस अयोध्या आए। तो निकले कहाँ से थे? अयोध्या से। वापस कहाँ परमानेंटली गए? अयोध्या में, क्योंकि वो उनका निज धाम है, बाकी बीच के सारे जो है वो तीर्थ है। ये सिर्फ टेक्निकल अंतर है, बाकी कुछ बड़ी कुछ बात नहीं है, लाभ सबकी जगह सेम होता है, क्योंकि वही भगवान निज धाम से चित्रकूट और अयोध्या और सॉरी नासिक और आगे पंपा सरोवर, वही भगवान तो खुद ही है ना, वो साक्षात साक्षात व्यक्ति रूप धाम है भगवान। भगवान जहाँ भी है वही धाम है, चाहे टेम्पररी हो परमानेंट हो, वही पोटेंसी अवेलेबल है भगवान की। आगे तीन प्रकार के धाम होते हैं, एक होता है ऐश्वर्य धाम, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य भगवान का प्रकट होता है, और सब लोग भगवान को भगवान है इस रूप में जानते हैं। इस द्वारका जाएंगे सब जानते हैं कि द्वारकाधीश भगवान है, जगन्नाथपुर सब जानते हैं जगन्नाथ भगवान है, वहाँ पर निवास करते हैं नीलाचल में, श्री रंगनाथ जी रंग क्षेत्र में निवास करते हैं, सब जानते हैं। और एक होता है माधुर्य धाम, यानी वो भगवान ही है और भगवान का ही धाम है, लेकिन कोई उनको भगवान के रूप में जानता नहीं है वहाँ पर। ऐसा कौन सा धाम है? वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम में भगवान होते हुए भगवान को कोई जानता नहीं कि ये भगवान है, भगवान खुद नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई उनको भगवान के रूप में जाने, इसलिए खुद ही उनका ज्ञान छीन लेते हैं कि मैं भगवान हूँ। ये ज्ञान होता है ना, अभी आपने भक्ति किया तो आपको ज्ञान होगा ना कि ये भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण, वो ज्ञान ही पहले भगवान अपने पावर से छीन लेंगे। क्या क्या नाम है उस माया का? मैंने बताया था वो दिन, जगन मोहिनी माया, उसके प्रभाव से वो नॉलेज ही छीन लेते हैं, डिलीट कर देते हैं आपका, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी इच्छा है कि यहाँ पर मैं ऐसे रहना चाहता हूँ, कोई मुझे जाने ही नहीं, पहचान ही नहीं कि मैं कौन हूँ, एक साधारण जीवन मैं जीना चाहता हूँ, एक पुत्र की तरह, मित्र की तरह, एक प्रियतम की तरह ऐसे रहना चाहता हूँ, ग्वाल बाल की तरह नंगे पैर घूमना चाहता हूँ। भगवान को भी अपना एक आनंद चाहिए ना खुद का, हर जगह पर वो ईश्वर परम कृष्ण करेंगे तो उनको भी आनंद नहीं आता है, सब जगह जाते ही श्लोक चालू हो जाते हैं, वेदों की ऋचाएं शुरू हो जाती हैं, तो वो है माधुर्य धाम। और तीसरा धाम होता है औदार्य धाम, वो हमारे चैतन्य महाप्रभु का धाम, जो भाव जहाँ प्रधान है उसका नाम देते हैं उसको, ऐश्वर्य भाव प्रधान है तो ऐश्वर्य धाम, माधुर्य प्रधान है तो माधुर्य, और औदार्य यानी उदारता प्रधान है तो औदार्य धाम। किस चीज़ की उदारता? जो प्रेम हमारे और भगवान के बीच में है उस प्रेम को बांटने की उदारता जब भगवान दिखाते हैं, एक जगह लीला करने को जाते हैं, एक जगह पर लीलाओं का आनंद लोगों को बांटने के लिए जाते हैं, एक जगह खुद आनंद लेते हैं और दूसरी जगह उसका निचोड़ जो है वो लोगों को वितरित करने के लिए जाते हैं, वो है औदार्य धाम, और वो है चैतन्य महाप्रभु। राधा और कृष्ण एक होकर गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बनते हैं और राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है वो सब लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के माध्यम से बांटते हैं। औदार्य धाम और माधुर्य धाम में जो भी आप करेंगे सब अपराध वगैरह गिने जाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो भी गिना जाएगा, अपराध भी गिने जाएंगे, जरा गड़बड़ किया तो भी गिना जाएगा, बहुत स्ट्रिक्ट है वहां पर, कोई उसमें कंसेशन नहीं है। और औदार्य धाम में कैसा है, आप कुछ भी मिस्टेक करो चलेगा, उदारता से आप माफ किया जाएगा आपको। इसलिए अगर किसी को धाम में जाना है तो पहले कहते हैं मायापुर जाना चाहिए, नवद्वीप, वहाँ पर जाके धाम में रहने के प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मिस्टेक करेंगे प्रैक्टिस करते समय तो उसमें कोई आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, कोई दंड नहीं मिलेगा। सबसे पहले वृंदावन में गए और बोलेंगे ये क्या है, गटर है इधर, क्या है कुछ मैनेजमेंट नहीं गवर्नमेंट का, क्या है इधर सब गंगा जमुना जी इतनी गंदी है, कुछ है नहीं, पंडालों कितने चोर है, रिक्शा वाले चोरी करते हैं फंसाते हैं, ऐसा करके जाएंगे ना तो एक दिन मिनट के अंदर बाहर फेंका जाएगा आपको, आपको दस लगेंगे आप बोलेंगे मुझे हॉस्पिटल जाना करके वृंदावन के बाहर चले जाएंगे। एक हमारे बचपन में ना, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, बहुत बड़ा गुंडा था, विरार में रहता था वो, और वो एक दिन वृंदावन में आया था गर्मी के समय, राधा वल्लभ जी मंदिर में आया था, राधा वल्लभ जी के गोस्वामी को मिला, लेकिन क्योंकि उसकी प्रवृत्ति अलग थी ना, आया था किसी सुकृति के कारण वहाँ पहुँच गया था वो, लेकिन अभी की उसकी जो कार्य पद्धति है वो थोड़ी सी गुनहगारी की थी, तो वो आया और आते ही वृंदावन छोड़ के भाग गया वो, उसको गर्मी इतनी असह्य हो गई, 50 डिग्री टेम्परेचर उसको बिल्कुल सहन नहीं हुआ, विरार मतलब बम्बई जैसा वातावरण, भाग गया वो वहाँ से, क्योंकि धाम को झेलना इतना आसान काम नहीं है, कृपा लगती है उसके लिए, फिर भी किसी पुराने सुकृति की वजह से पहुंच गया था उधर। तो कहने का तात्पर्य है कि माधुर्य धाम में कर्रे नियम होते हैं और आप वहाँ पर लाइटली बिहेव नहीं कर सकते हैं, लेकिन औदार्य धाम में आपको बहुत छूट मिलती है, कोई गलती भी करोगे तो कोई बात नहीं, अभी सीखो कोई बात नहीं, उसका दंड नहीं मिलेगा आपको। तो वृंदावन धाम माधुर्य धाम है और मायापुर धाम औदार्य धाम है और बाकी सब ऐश्वर्य धाम है। कौन से बद्रीनाथ, द्वारका, श्री रंगनाथ, जगन्नाथपुरी, ये सब, लेकिन जगन्नाथपुरी एक विशेष धाम है, जगन्नाथपुरी में माधुर्य और ऐश्वर्य एकत्र होकर प्रकट हो जाता है। कैसे, श्री जगन्नाथ भगवान जो है वो द्वारका के ऐश्वर्य संपन्न भगवान है, लेकिन मतलब उसके ऐश्वर्य में रहते हैं, अच्छे ठाट से रहते हैं, छप्पन भोग खाते हैं, बढ़िया ललित श्रृंगार करते हैं, एकदम ड्रेसिंग में बहुत बहुत एक्सपर्ट और बहुत मशहूर है वो, कितने प्रकार के भैंस पहनते हैं साल भर में, उसका एक पूरा किताब है कौन से भैंस पहनते हैं, उसका क्या क्या डिटेल में सब, कितने फूल लगते हैं उसके अंदर, सब कुछ डिटेल में वर्णन है उसका, उसको ही पीएचडी कर सकते हैं आप, इतने ललित श्रृंगारी है वो, लेकिन है वृंदावन धाम के विरह में, वो कृष्ण है जो वृंदावन धाम की याद में है, तो माधुर्य को अंदर से प्रकट कर रहे हैं और बाहर से ऐश्वर्य में रह रहे हैं, तो वो जगन्नाथपुरी है। और वो औदार्य भी है क्योंकि औदार्य पुरुष चैतन्य महाप्रभु वहां पर जाकर रहे थे और उनका भाव और इनका भाव का एक बार मुलाकात भी हुई थी रथ यात्रा में, इनका विरह भाव और ऐश्वर्य भाव का संपर्क हुआ था चैतन्य महाप्रभु के औदार्य और प्रेम से। बड़ा अद्भुत धाम है वो, समझने के लिए बहुत मुश्किल है, ऐसे ही कोई संत चाहिए जो आपको लेके जाएगा और समझाएगा कि यहाँ पर क्या रहस्य है। कि दो पार्ट की लीलाएं हैं, एक जगन्नाथ की लीलाएं हैं, एक महाप्रभु की लीलाएं हैं, और एक जगन्नाथ महाप्रभु की और चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ के साथ में लीलाएं हैं, दोनों है इसके अंदर, और ये सबका आनंद वहां पर, बहुत सुंदर आनंद वहां पर है। ओके, अभी श्री वृंदावन के विषय में बात करेंगे, वृंदावन के विषय में शाम का भी समय है, शाम को भी आइए, आधा पाठ शाम को करेंगे। तो वृंदावन धाम में और बाकी धामों में अंतर क्या है, मैंने पहले बताया कि वृंदावन धाम में भगवान को भगवान के रूप में कोई जानता नहीं है, वहां पर ऐश्वर्य का कोई स्थान नहीं है, ऐश्वर्य है लेकिन ऐश्वर्य कोई पूछता नहीं है, सब लोग प्रेम को ही ज्यादा पूछते हैं, ज्यादा बोलबाला प्रेम और भाव का होता है, ऐश्वर्य का नहीं होता है। और भगवान भी कैसे रहते हैं, एकदम आराम से चप्पल बिना पहन के घूमते हैं, बिना चप्पल पहन के घूमते, कितनी बड़ी बात है पता है आपको, आप लोग में से कितना बिना चप्पल घूमते हैं यहाँ पर, एक भी नहीं, मैं भी नहीं घूमता, सब लोग चप्पल पहन के आते हैं, बाहर चप्पल निकाल के अंदर आते हैं, फिर वापस चप्पल पहन के फिर चले जाते, फिर चप्पल निकालते हैं। लेकिन भगवान पूरे वृंदावन धाम में जन्म से लेकर अंतर्धान होने तक चप्पल नाम की चीज पहनते नहीं है, बूट चप्पल पादत्राण जो भी बोलो कुछ भी नहीं पहनते। इसलिए इस वृंदावन धाम की विशेषता क्या है, बाकी जगह पर क्या होता है, बैकुंठ में क्या होता है, द्वारका में क्या होता है, वहां पर भगवान के लिए ना रत्नों से जड़ित पादत्राण है, यू नो ज्वेल्ड बिज्वेल्ड फुटवेयर इज देयर। आप अंदाज नहीं लगा सकते कितना भव्य वो चप्पल होगी भगवान की, चप्पल से प्रकाश निकलता है, इतना भव्य चप्पल होता है। और ऐसा नहीं कि खड़े लगाए रत्न लगाए इसलिए बहुत सख्त होगा, पैर में चुभता होगा, पहनने के लिए बहुत मुलायम, सब जगह से रत्न लगे हुए हैं, सब जगह चमक रहे हैं, तो उसके बिना भगवान चलते ही नहीं, हमेशा वो पैर में रहता है उनके। अच्छा, अब के जाने का समय कुछ आएगा तो अपने कमरे से अपने महल से बाहर आएंगे तो वो चप्पल पहन कर आएंगे और सब कमरे में मखमल बिछा के रखा है, जाजम यानी कारपेट, एकदम मुलायम ऐसा है, एक एक इंच का, एक 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 चार चार इंच का बड़ा रहता है। वो राधा रानी के महल का वर्णन एक बार एक जगह पे आया हुआ है, क्या उसका फ्लोर है राधा रानी के महल का, और कैसे वो चलती है उसके ऊपर, कैसे पूके सर रहते हैं उसके, फूलों के पूके सर, यू नो पोलेंस ऑफ द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स चार चार इंच के लगे रहते हैं उस पर, राधा रानी अपने कोमल पैर लेकर चलती है, और जब बाहर निकलती है तो उसके तुरंत चप्पल सामने आ जाती है कृष्ण और राधा रानी के लिए, और थोड़ा आगे चल के तुरंत रथ रेडी है, तो जमीन पर पैर कहाँ लगेगा, फिर रथ में बैठ जाएंगे, फिर जहाँ जाना है पहुँच जाएंगे और चप्पल से उतरेंगे और फिर महल में प्रवेश करेंगे, फिर आगे ऊपर वापस पूके सर से भरा हुआ जमीन। इतना ऐश्वर्य है, फिर भी प्रधानता ऐश्वर्य की नहीं है, प्रधानता भाव माधुर्य की है। एक छोटी सी कहानी आदि याद आई, बताऊँ क्या आपको इसके विषय में, बताता हूँ, हाँ थोड़ा सा विषयांतर होगा लेकिन आपको आनंद आएगा। सीता जी का विवाह हुआ ना, तभी वो केवल 6 वर्ष की थी, 4 वर्ष की उम्र में उसने वो शिव धनुष से उठाया था, तब वो आए थे मुनि, नारद मुनि और परशुराम जी आए थे, उन्होंने कहा था अरे बाप रे 4 साल की उम्र में शिव जी का धनुष उठाया, तो कम से कम वो धनुष उठाने वाला तो होना चाहिए उसका पति, नहीं तो वो शर्मा जाएगा उसके सामने, अरे इसकी शक्ति ज़्यादा है मुझसे, तभी स्वयंवर ऐसा बना दो कि ये उठाएगा वो पति बनेगा। तो 6 साल की उम्र में जब विवाह हुआ ना, तो कौसल्या ने बहुत सीता की कोमलता के बारे में सुना था, भले शक्ति बहुत थी उसके अंदर, और धनुष उठाया था उसने, कैसे उठाया था पता है, ऐसा करके नहीं उठाया था, उससे फूल तोड़े थे, फूल पेड़ से फूल तोड़े थे, ऐसे हम लोग कैसे दंडी लेके अगर ऐसा ऐसा आंकड़ा रहता है आंकड़ा, उससे हम लोग ऐसा कैसे ना आसानी से करते ना, कोई ऐसा मुश्किल थोड़ी होता है डंडा उठाने में, ऐसा नहीं होता है कष्ट वष्ट, ऐसे फूल निकालने के लिए हाथ नहीं पहुंच रहा था तो धनुषशाला में जाकर धनुष उठाकर उससे फूल तोड़े और धनुष वहां रख दिया वापस आके। 500 पहरेदार है पहलवान उसके, कभी चलाना होगा तो उनको 500 पहरेदार की जरूरत होती है, और 500 बैल है ट्रेंड जो लगते हैं उस बैलगाड़ी को, जिस पर वो 500 मल्ल जो है वो उसको उठाकर रखते हैं, फिर वो बैल लेके जाते हैं, एक साल में एक बार उसकी पूजा होती है। ऐसे लीलया यानी आसानी से उस धनुष को उठाकर उन्होंने फूल तोड़े थे। दूसरी कहानी भी है कि वो फूल तोड़कर कहीं अपने छत पे रख दिया उसको, सब लोग ढूंढ रहे किधर गया किधर गया किधर गया, तो राधा सीता देवी के सीता मैया के कमरे के बाहर ऐसा रखा हुआ मिला, जस्ट लाइक पार्क्ड यू नो, तो इधर कैसे आया, तो उन्हें बोला कि मैंने फूल निकालने के लिए आया, नीचे रखने को भूल गया, इधर ही छोड़ दिया उसको, बोले ठीक है 500 मल्ल आए उसको उठा के नीचे रखा वापस। और एक बार खेलते खेलते ना फूल की गेंद है ना, फूल की गेंद, ऐसे फूल की गेंद गेंद खेल रहे हैं लड़कियां सब सीता देवी की सहेलियां, और वो गेंद जाती है धनुषशाला में अंदर, कभी कभी होता ना हम लोग एक सिक्स मारते तो खिड़की तोड़कर कमरे में बेडरूम में प्रवेश करता है बॉल, और किसी के बेडरूम के नीचे जाकर वो छुप जाता है, फिर आप अंकल अंकल बॉल दो ना प्लीज अंकल बॉल दो ना, वैसे ये धनुषशाला का खिड़की से जाकर धनुष जिस पर रखा है उसके नीचे गेंद जाती है, तो सब लड़कियां आती है बोले गेंद कहाँ है गेंद कहाँ है, कुछ झुक के देखती तो उसको दिखता रहे वो धनुष के नीचे है, वो धनुष को हटाए बिना अभी गेंद निकलेगी नहीं, गेंद चाहिए हमको खेलने के लिए। तो उसके बाद सीता जी आई, उनको बताया देखो गेंद वहाँ पर है, सीता जी गई धनुष को उठाया बाजू में रखा, ले लो गेंद ले लो, गेंद ले लिया धनुष रखा और चले गए खेलने के लिए, और सब सैनिक देखते रह गए क्या हो रहा है व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन बहुत आसानी से किया, बाय द मैटर ऑफ फैक्ट चली गई वो। लेकिन ऐसा सब होने पर भी सीता के कोमलता का विषय में बहुत चर्चा थी कि अगर किसी दीपक के बाजू में सीता जी को बिठाया गया किस पूजा में, तो उस दीपक की रोशनी और गर्मी से भी उसका चेहरा मुरझाया जाता था, इतनी सुकोमल थी वो। कभी कोई पूजा हो रही है, उसमें पिताजी के बाजू में बैठी है, पूजा हो रही है और बार बार दीपक जलाए जा रहे हैं, तो उससे वो चेहरा सूख जाता था उसका, होंठ सूख जाते थे, बार बार प्यास लगती थी। तो ये सब ओरिएंटेशन कौशल्या देवी को मिला था पहले से ही, तो वो प्लानिंग कर रही है कि अभी इतनी सुकोमल मेरी नवपरिणीत बहू आएगी तो उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। उसने क्या किया ना, उसने अपने स्पेशलिस्ट लोगों को बुलाया और करोड़ों फूलों के पूंकेसर मंगाए, फूल पंखुड़ियाँ नहीं मंगाई, पूंकेसर बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, मोर सॉफ्टर एंड कोमल, वो पोलेंस होते हैं, और 6-6 इंच जमीन पर उसका लेयर होना चाहिए। ऐसे पूरे महल में जहाँ जहाँ उसका प्लानिंग था कि यहाँ से बारात आएगी यहाँ से उतरेगी, तो थोड़ा सा अंतर था लेकिन सारा भर दिया था उसने, बोले जितना हो सके उतना उसको अधिक से अधिक अंतर तक क्लोजेस्ट ले देके आने का महल में। और उसके बाद में उसके कमरे की जो सीढ़ी है तब तक पूरा सब कुछ वो बोले होना चाहिए, और उसके बाद भी फिर चढ़ के जाएगी अपने महल में। तो ऐसे ही हुआ। अभी बहुत मंथन किया है कौशल्या देवी ने कि इसके सुकोमल चरणों को कहीं भी कष्ट नहीं होना चाहिए, और वो रथ से उतरी और उसको चलाया जा रहा है, कौशल्या देवी उसको हाथ पकड़कर ले आ रही है अपने घर में, अभी पति के घर में। तो थोड़ी देर चली समझो, यहाँ से यहाँ आना है समझो, तो आधा अंतर आई ना तो उसका चेहरा ऐसा थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, अनईजी हो गया, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो गया। तो कौशल्या ने पूछा, बेटी क्या हुआ? तो वो तो बड़ी शालीन कन्या थी, उसने कहा कुछ नहीं हुआ मैया। तो कौशल्या कहते, देखो बेटी अभी तुम यहाँ से यहाँ की पराई लड़की नहीं हो, अभी तुम्हारा घर है ये, दिस इज योर ओन हाउस, अभी संकोच करते रहोगी तो फिर कैसे चलेगा आपका, जो भी है बोल दो। फिर थोड़ा संकोच किया, फिर बताती है ये तुम्हारा घर है, अभी तुम पराई नहीं हो, यहाँ पर तुम यहाँ की निवासी बनोगी, बता दो। तो क्या कहती है सीता पता है आपको? वो कहते आपके जो ये जमीन पर डाला ना, मेरे चुभ रहा है पैर को। तो पैर चुभ रहा है तो चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? बोलते आपके जितनी भी औरतें हैं ना इस महल में, आपकी सेविकाएं जो भी है, वो मुझे टुक 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 देख रही है ना, उनकी नजरों से मुझे गर्मी पैदा हो रही है, आई एम अनेबल टू टॉलरेट देयर साइट। एक है बल की परिसीमा, एक है कोमलता की परिसीमा, है ना। तो क्या किया कौशल्या ने सीता देवी को तुरंत गोद में उठा लिया और अपना जो घूंघट था ना ऐसा पूरा ढक लिया उसको। तो क्या किया, पैरों का जो चुभने वाला काम था वो हटा दिया और नजरों वाला काम जो बोले मेरी दुल्हन को किसी को देखना नहीं चाहिए, और ऐसे ही उठा के गोद में, अपने नई दुल्हन को गोद में उठा के पूरी सीढ़ी चढ़ के ऊपर गई वो। फिर उनकी मुंह दिखाई हुई। हाँ, मुंह दिखाई कैसे हुई? सबसे पहला नंबर था कौशल्या का, ज्येष्ठ माता ना, ज्येष्ठ सासू माँ। तो उनको कहा, कौशल्या जी आपका अभी मुंह दिखाई का क्या देंगे मुंह दिखाई के लिए? तो कौशल्या ने कहते हैं, मन से जनक सॉरी दशरथ महाराज का पूरा तिजोरी स्कैन कर लिया, पूरा मन से, उनको सब पूरा पता है ना, अपने पति का पूरा लॉकेट वॉलेट की तरह सब पता रहता है, पूरा तिजोरी का पूरा ज्ञान था। तो पूरा तिजोरी में पूरा मंथन किया, मनन किया कि इसके अंदर कोई वस्तु है क्या इसके मुंह दिखाए के योग्य, तो कुछ नहीं मिला उसको। तो उसने मन से इंद्र की जो तिजोरी है उसमें स्कैन किया पूरा, उसमें भी कुछ नहीं मिला उनको। फिर वो दुखी हो गई कि इतना सुंदर चेहरा मेरे बहू का मैं देख रही हूँ और उसके बराबरी का कुछ भी मिल नहीं रहा है कि मैं मुंह दिखाई में दे दूँ। कैसा होता है ना, मुंह दिखना होता है और मुंह के बराबर कुछ गिफ्ट देना होता है, इक्वल यू नो अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ द बहू। तो फिर वो अपने महल में ढूंढने लगी, तो पीछे घूमी तो उनको राम के दर्शन हुए। तो उन्होंने कहा, हाँ ये बढ़िया चीज़ है, मतलब ये आई कैन गिव। तो घूमकर कहती है कि मैं आज मेरे राम को आपको सौंप दे रही हूँ। अभी उसमें क्या बड़ी बात है, आप कहेंगे शादी तो हुई है, अभी क्या सौंप देने का मत क्या है। वो राम के ऊपर उसका जो अधिकार था माँ के रूप में वो उसके हाथ में दे रही है। पति तो उसके हो ही गए वो, लेकिन माता का फिर भी अधिकार बचता है कि नहीं? माता का संबंध कुछ अलग है उससे। तो वो कहते हैं कि आज ये रत्न जो है मेरे मेरे महल का जो रत्न है वो मैं आपको मुंह दिखाई में देती हूँ। फिर कैकेयी का नंबर आता है, मुंह दिखाई का। तो कैकेयी ने पहले से ही एक कनक भवन बना के रखा है, गोल्डन पैलेस, बहुत सुंदर प्रेम से बना के रखा है। वो उनको मुंह दिखाई में भेज देती है। फिर सुमित्रा का नंबर आता है, तो सुमित्रा भी इतनी महान 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 भक्त है भगवान की, इतनी सुंदर चेतना है उसकी। वो अपने दो पुत्रों को लाती है, भरत को और शत्रुघ्न को, है ना, दो पुत्र हैं उनके। और कहती है आज मेरा मातृत्व का जो अधिकार है वो तो मैं तुमको सौंपती हूँ। कैन नॉट इमेजिन, वो क्या त्याग कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कितना प्रेम उनकी सुचिता के प्रति मन में उनके उत्पन्न हो रहा है। और बहू भी इतनी श्रेष्ठ बहू है कि उनका बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रकट हो रहा है उसमें, किसका, देखने वालों का, है ना। तो अगर हम लोग अगर खुद पवित्र और श्रेष्ठ होंगे ना तो लोगों के अंदर का श्रेष्ठत्व अपने आप प्रकट हो जाता है। जब आप गुरु महाराज को मिलते हैं ना तो बेस्ट ऑफ यू कम्स आउट ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ गुरु महाराज, है ना। और बाकी को मिलेगा दोस्त वोस्त तो आपका आपका बुरी साइड प्रकट हो जाती है, गाली गलौज, बकना, कुछ झगड़ा करना, वो सब। लेकिन गुरु जी के सामने आएंगे तो आपका बेस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस जो आज के तारीख में है वो वहाँ पर प्रकट हो जाता है, द बेस्ट ऑफ यू। उस तरह से सीता देवी बेस्ट ऑफ बेस्ट थी, इसलिए सब लोगों का बेस्ट, लोगों का बेस्ट भाव वहाँ प्रकट हो रहा है। तो सुमित्रा ने अपने मातृत्व का पुत्रों के साथ सीता जी को दान कर दिया, बोले आज के बाद ये आपको माता कहेंगे और आप उनकी माता होगी, ये आपके पुत्र रहेंगे जो आपके आज्ञा का पालन करेंगे। तो मुझे ये जमीन के ऊपर जो पैर नहीं टिकते ना उसके ऊपर से याद आया मुझे कहानी। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान को ऐश्वर्य धामों में जमीन को पैर स्पर्श करने का चांस ही नहीं होता है, किधर इतना ऐश्वर्य है। इसलिए ऐश्वर्य धाम में, वैकुंठ धाम में भगवान के चरणों की रज बनती ही नहीं है। चरणों की रज कब बनती है? जब चरणों के तलवों का भूमि के साथ, धूल के साथ स्पर्श होता है। कुछ कण भूमि पे लगते हैं, पैर में लगते हैं, कुछ के ऊपर पैर पड़ के आगे चले जाते हैं, है ना, दोनों होता है ना। आप चलेंगे तो आपके पैर का निशान भी धूल पे आ जाएगा और कुछ धूल भी पैर को लगेगी, और दोनों, वो पैर के निशान के ऊपर का धूल और पैर को लगा हुआ धूल, दोनों ही चरण धूल ही है, दोनों में वही पावर है। लेकिन और कहीं वैकुंठ में भी भगवान के चरणों की धूल नहीं बनती, लेकिन वृंदावन में भगवान कभी भी पादत्राण नहीं पहनते, इसलिए वृंदावन में रज ही रज है सब जगह पर, हर जगह पर रज है भगवान की। इसलिए देवतागण भी वैकुंठ जाने बिना वृंदावन में आते हैं चरण धूलि प्राप्त करने के लिए। संत लोग जितने हैं, साधु लोग जो हैं, सिद्ध महात्मा लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, योगी लोग हैं, वो भगवान की चरण धूलि जान लेने के लिए श्री वृंदावन धाम में आते हैं। एक ही जगह है वृंदावन धाम। और वृंदावन की विशेषता क्या है? गौलोक धाम, वैकुंठ धाम, ये सभी धामों में भगवान एक विशिष्ट उम्र में रहते हैं, षोड़श वर्षीय युवक के रूप में रहते, किशोर अवस्था में रहते, कोई बाल्यपन का कोई काम नहीं वहां पर। देयर इज नो चाइल्डहुड लीला, जन्म लेना, रेंगना, तोतले तोतले बोल बोलना, चलने को सीखना, गिर जाना, फिर वापस चलना, फिर वापस करना, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पर। लेकिन वृंदावन धाम में भगवान, एक तो भगवान के रूप में नहीं आते, वैसे अयोध्या में भी भगवान भगवान बालक के रूप में आए थे ना, लेकिन अयोध्या में सबको पता था कि ये भगवान है, भले वो रेंग रहे थे, ठुमक ठुमक रामचंद्र, सबको पता था, लेकिन सबको पता था कि भगवान भी है। लेकिन वृंदावन में उसी छोटे रूप में आए, लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये भगवान है। ये पृथ्वी की एक महानता है कि जब भी कोई भगवान जन्म लेते हैं तो केवल पृथ्वी पर ही उनका बाल्यपन होता है, सबका नहीं होता, किसी किसी का, लेकिन यहीं पर होता है और कहीं नहीं होता है। एक पृथ्वी का महात्म्य है और उसमें भी एक वृंदावन का महात्म्य है, इसलिए शंकर जी भी आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो बाल स्वरूप का दर्शन राधा रानी का हो, कृष्ण का हो, वो केवल ब्रज में होता है और अयोध्या में होता है, बाकी कहीं पर वर्णन आता है तो मुझे बता देना आप, बहुत आई डोंट थिंक इट इज देयर। फिर बाकी धामों में भगवान का मिलन का लीला है, संयोग का लीला है, ब्रज में संयोग भी है वृंदावन धाम में और वियोग की लीला भी है। इनफैक्ट वियोग की लीला बहुत लंबी है और संयोग की लीला बहुत छोटी है। 11 साल 52 दिन एक कैलकुलेशन है उसका, जो मिलन की लीला है। सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल गाय गैया गोपी सब लोग कृष्ण से मिल रहे हैं और मिलन का आनंद ले रहे हैं, संघ का आनंद ले रहे हैं, सान्निध्य का आनंद ले रहे हैं। और जब चले गए तो कितने दूर रहे, कितने साल तक? 115 साल के ऊपर दूर रहे वो। भगवान 2 दिन के बाद करके गए थे, लेकिन ऑलमोस्ट 115 साल के बाद में आए वो। तो क्या कहते हैं, अ डेकेड ऑफ यूनियन एंड अ सेंचुरी ऑफ सेपरेशन, ऐसे भी बोलते हैं। उसका कारण क्या है, गौलोक धाम में एक बार विरजा गोपी, एक अलग गोपी है, बहुत विशिष्ट गोपी है वो, जो नदी के रूप में भी वहाँ विरजा नदी बन जाती है। वो विरजा गोपी के साथ में एक बार कृष्ण एकांत संग कर रहे थे एक कुंज में। और जब ये संग कर रहे थे तो राधा रानी का भाई जो है सीदामा, उसको पैरे में रखा था कि किसी को अंदर आने मत देना, और एकांत में वो लोग बातें कर रहे थे। उतने में राधा रानी को पता चला कि वो विरजा के संग में है, तो वो देखने के लिए आई कि सच है कि झूठ है। तो जब आई तो सीदामा ने उसको रोका, बोले यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर कृष्ण है, विरजा के संग है, बोले यहाँ पर कोई नहीं है, चली गई वो। फिर पता चला कि नहीं वो वही है, फिर दोबारा आई, बोला सीदामा तुम झूठ बोल रहे हो, वो यही है। तो पहले बार जब ही बाहर का ये शोर सुनाई पड़ा अंदर कृष्ण और विरजा को, तो विरजा नदी रूप होकर बह गई और कृष्ण कहीं चले गए कहीं। कुछ देर बाद पता चला राधा रानी चली गई, तो दोबारा वापस गोपी और कृष्ण के दोनों रूप आगे मिलने लगे। फिर दोबारा आई, फिर वापस शोर मचाना बाहर, वो कह रहे नहीं है, है नहीं है, मैं जानती हूँ है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोले जो भी कुछ है तुम अंदर जा सकते नहीं हो, उसका डाउट और स्ट्रांग हो गया कि है अंदर, इसलिए वो मना कर रहे हैं, मेरे होते हुए तो अंदर नहीं जा सकती। तो राधा रानी भी कुछ कम नहीं थी, उन्होंने कहा मैं शाप देती हूँ तुम पृथ्वी पर जाकर राक्षस बनोगे, क्योंकि मिलन की इतनी उत्सुकता है राधा रानी के मन में। तो शाप दे दिया अपने भाई को, तो भाई भी बहुत जोरदार, उसने कहा तुम भी पृथ्वी पर जाकर 100 साल तुम्हारे प्रियतम से विरह में रहोगी। इसलिए सीदामा जाकर क्या बने, शंखचूड़ राक्षस बने। और राधा रानी फिर जन्म लिया पृथ्वी पर, 10 साल के आसपास साथ में रही और 100 साल के ऊपर दूर रही उनसे। ये उसके पीछे कहानी है, वो सब लीला है, वो नीचे उतरने का बहाना है सबका। तो मिलन और संयोग ऐश्वर्य धाम में अधिक होता है, और माधुर्य धाम में वृंदावन में मिलन कम, संयोग वियोग ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वियोग की भावना जो है उसमें उत्कटता होती है, उसमें अपने प्रियतम का ध्यान मिलन से भी अधिक गहरा होता है। अभी मैं आपको मिल रहा हूँ, मेरा आपका प्रेम है, एक प्रकार का अपना संबंध हो रहा है, लेकिन अगर मेरा आपका प्रेम बहुत गहरा है और आप इंग्लैंड चले गए, मैं अपने घर चला गया, तो मुझे आपकी याद आती रहेगी, आपको मेरी याद आती रहेगी। वो याद में जो संग होता है ना, वो ज़्यादा गहरा होता है, मिलन से भी अधिक गहरा होता है। जब प्रियतम से हमारी बिछड़ जाते हैं हम लोग, ये रहस्य प्रभु रामचंद्र ने सीता जी को समझाया था, वो भी मुझे कहानी अभी याद आ रही है। प्रभु रामचंद्र वनवास में थे, बहुत जगह थे वनवास में, एक जगह थे वनवास में मामगाछी में, मोद द्रुम द्वीप, नवद्वीप का एक जगह है वो, वहाँ पर एक अच्छा कल्प वृक्ष है जिसका नाम है मोद द्रुम, द्रुम का मतलब पेड़ होता है, मोद यानी आनंद, आनंद का स्वरूप था वो पेड़, जिसके नीचे ये निवास कर रहे थे। और प्रभु रामचंद्र बैठे हैं, सीता जी बैठी हुई है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो हंस पड़ते हैं प्रभु रामचंद्र, स्मिता हास्य देते हैं। तो सीता जी पूछते हैं क्यों हंस रहे हैं आप, तो कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि यहीं पर मैं 2 युगों के बाद में अवतार लेने वाला हूं इसी धाम में। अच्छा, कौन सा अवतार लेने वाले हैं? मैं सची माता का पुत्र बनकर आऊंगा, जगन्नाथ मिश्रा का पुत्र बनकर आऊंगा, और मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुम विष्णुप्रिया के रूप में आओगी और मैं तुमसे विवाह करूंगा। और सब कुछ बताया, अच्छा अच्छा बताया सब, एंड में बताया कि कुछ देर बाद मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, अरे ऐसे कैसे क्रूर बनोगे आप? क्योंकि सच्ची माता के भी वर्णन किया, इतनी प्रिय माता, इतनी प्रिय प्रेम करने वाली माता को छोड़ दोगे, मुझे भी छोड़ के चले जाओगे, कैसे क्रूर कर्मा हो आप? क्या क्यों ऐसा कर रहे करोगे आप? इतना लंबा प्लानिंग पहले ही कर दिया आपने कि हमको छोड़ के चले जाएंगे। कम से कम वनवास में हम हैं, लेकिन आप हमारे साथ में हैं, कोई ऐश्वर्य की जरूरत नहीं, आप है वही ऐश्वर्य है। लेकिन यह छोड़ के जाना, बताइए क्या बात है इसके अंदर? तो प्रभु रामचंद्र ने सीता देवी को मिलन और विरह की पूरी व्याख्या बताई वहां पर, कि मिलन का क्या परिणाम होता है और विरह में क्या होता है, और कैसे विरह जो है वो मिलन से भी करोड़ों गुना अधिक गहरा और आनंददायी होता है। वो प्रेम का ऐसा अनुभव है जो मिलन से भी करोड़ों गुना अधिक है। और ये जो है तुम्हें उसका अनुभव देने के लिए मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा। और बताया कि और एक कारण छोड़ के जाने का, मैं विश्व के कल्याण के लिए उस समय हरिनाम बांटने के लिए, वितरित करने के लिए आपको छोड़ के जाऊंगा। तब सीता देवी कुछ शांत हो गई है, ठीक है भाई, समझ गई कि इसके पीछे रहस्य क्या है। तो वो विरह का भाव जो है वो माधुर्य धाम में होता है। और भगवान के ऐश्वर्य धाम में उधर ऊपर कोई युद्ध वुद्ध नहीं होता है, कोई राक्षस को मारना ऐसा कुछ होता नहीं है। वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में कोई राक्षस नहीं होता, सब भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं। तो भगवान के अंदर जो युद्ध करने की, लड़ने की जो इच्छा है वो कैसी पूरी होगी? उसको कहते हैं वीर रस, या वीर रस कहते हैं उसको। वो वीर रस की पूर्ति कैसे होगी? तो भगवान क्या कहते हैं, अपने दोस्तों में से कोई लोगों को चुनते हैं, कुछ लीला रचाते हैं, उनको पृथ्वी पर राक्षस के रूप में भेज देते हैं, जाओ बहुत भयंकर राक्षस बनो, फिर मैं आता हूँ, हम लोग जम के युद्ध करेंगे और हम आपको मार देंगे, उसमें हमारी वीर रस की पूर्ति हो जाएगी। आई विल बी फुलफिल्ड इन माई फाइटिंग स्पिरिट। तो ये फाइटिंग स्पिरिट जो पूरा करने का काम है, वो फली पृथ्वी पर जब भगवान अवतार लेते हैं ना, यहाँ पर जब धाम बनाते हैं तो वहीं पर होता है, उधर नहीं होता है कुछ। वहाँ पर कैसे मराठी में कहते हैं ना, लुटू पुटू ची लड़ाई, मतलब क्या मालूम है आपको? मतलब मैं भी मेरे बेटी के साथ में फाइटिंग करता था बचपन में, जब वो छोटी थी, और इतनी सी मेरी बेटी, इतना बड़ा मैं, तो मुझे मेरी बेटी हराती थी, चीतपट करती थी, बोले पापा को हरा दिया, पापा की पीठ को जमीन पर लगा दिया, पापा को आसमान लगा दिया, पापा भी खुश, पराजित होने पर भी खुश, बेटी भी खुश, दोनों भी खुश। उसको क्या कहते हैं, लुटू पुटू की लड़ाई, मतलब झूठ मूठ की लड़ाई। तो पापा जानबूझ के हार जाता है, और हारने में ही अपने आप को संतुष्टि प्राप्त करता है, और बेटी वास्तव में जीतती है और आनंद लेती है कि मैंने पापा को भी हरा दिया, है ना। जैसे ड्राइविंग करते वक्त कैसे, आज मैं ड्राइविंग करूंगी, ऐसे करके पापा की गोद में वो बैठ जाएगी और पूरा स्टीयरिंग घुमाएगी ऐसे ऐसे, हाउ मूवी ऐसे करेगी, लेकिन क्लच एक्सेलेटर सब कुछ पापा के पैर में होता है और बेटी के हाथ बगल स्टीयरिंग होता है। और बेटी को देखो मम्मी को जगह बताएगी, आज मैंने सारा ड्राइविंग मैंने किया, लेफ्ट टर्न राइट टर्न, रुकना चलना आगे, सब सिग्नल पर रुकना आगे चला जाना, सब कुछ मैंने किया, पापा ने कुछ नहीं किया आज। और पापा को भी खुशी है, हाँ आज मेरी लड़की ने सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। इसी में उसको खुशी है कि मेरी बेटी समझ रही है कि मैं ही कंट्रोलर हूँ। तो वो सब जो भाव है वो ऊपर होता है वैकुंठ में, और यहाँ पर एक्चुअल लड़ाई होती है। वो जो जय विजय है वो रावण बनकर आता है, कुंभकर्ण बनकर आता है, यहाँ पर भयंकर युद्ध करते हैं, फिर शिशुपाल दंतवक्र बनकर आते हैं, फिर कृष्ण उनको मार देते हैं, कंस बनकर आते हैं कोई उसको मार देते हैं। ऊपर नहीं होता है कंस वंश कोई, सब लोग फ्रेंड बनकर रहते हो ऊपर। वही लोग, हरे कृष्णा। तो अभी समय समाप्त हो गया है, 5 मिनट बाकी है, तो थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ऐसा जो वैकुंठ है जिसमें भगवान के अनंत लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करती रहती हैं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानव गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। अभी लक्ष्मी के बारे में क्या बताएं आपको? लक्ष्मी और विष्णु, इनका एक बार ऐसा ही प्रेम का झगड़ा हो गया, होता है ना अपने घर पे कभी, रियल फाइट नहीं होता है लेकिन ऐसा ही वाद विवाद, उसमें भी मज़ा आता है बहुत, हस्बैंड चिढ़ाते हैं, कभी पत्नी चिढ़ाती है, कभी पति चिढ़ाता है, झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे एक बार के लुटू पुटू की लड़ाई में लक्ष्मी जी का कंगन टूट गया, होता है ना कभी कभी भी कुछ छिना झपटी होती है तो कंगन टूट जाते हैं, तो और गुस्सा आ जाता है, कंगन तोड़ दिया तुमने मेरा। तो ऐसा ही कंगन टूट गया तो लक्ष्मी ने क्या किया ना, वो टूटा हुआ कंगन यहाँ से निकाल के ना सा फेंक दिया सब गुस्से से। कहते हैं पूरा मटेरियल वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स वो टूटे हुए कंगन पे चल रहा है आज भी, जो उतने ऐसे प्रेम से ऐसे बीच में ऐसे ही फेंक दिया था उसको। एक ही था वो, और वो टूटे हुए कंगन के ऊपर पूरा मटेरियल वर्ल्ड जो महत्त्व के नीचे है उसका इकोनॉमिक्स चल रहा है। और ऐसे लक्ष्मी के हाथ में केवल वो टूटा हुआ एक ही नहीं था, उधर भी बहुत सारे थे, दूसरे आदमी भी बहुत सारे हैं, बाजूबंद भी बहुत सारे हैं, अंगूठियाँ भी बहुत सारी है, कमर में भी बहुत सारा पहना हुआ है, और गले में तो पूछो ही मत, कान में भी है, मुकुट पे भी है, बहुत सब जगह पर अलंकार ही अलंकार है। और ऐसी एक लक्ष्मी है जिसके ऊपर इतना अलंकार है, वो तो खुद का पहना हुआ है, ऐसा नहीं कि खाली पहना हुआ उतना ही है बाकी कबड़ में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो अलग श्रृंगार सेट अलग अलग होता है हर रोज का, तो तिजोरी में कितना है वो पता नहीं है, पहना हुआ इतना है तिजोरी में कितना है, और वो सब मिलकर एक ही लक्ष्मी का है। और क्या कहा है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवे मानव, ऐसी कोट्यवधि लक्ष्मियां हैं जो विष्णु की सेवा करने में हम तत्पर रहती है। कितना ऐश्वर्य होगा कुछ अंदाज लगा सकते हैं? जैसे मैं अभी आप में से किसी को पूछता हूँ, किसी भी माता को पूछता हूँ, माता जी आपके पास कितने ड्रेस हैं, तो आप भी नहीं बता पाएंगे। मैं बोला जाके गिन के आती हूँ। मुझे पूछेंगे आपके पास कितने कुर्ता है, आई डोंट नो, आई हैव टू गो एंड काउंट, आई डोंट नो कि 10 है 20 है 50 है, बहुत सारे हैं इतना पता है। उस तरह से धनी आदमी को पूछेंगे आपके पास कितना धन है, तो भी बोलेगा थोड़ा 8 दिन दे दो, मैं थोड़ा सर्वे करके बताता हूँ कितना धन है। वैसे लक्ष्मी के पास में, एक लक्ष्मी के पास कितना धन है अंदाज नहीं लगा सकते हम। और ऐसी कोट्यवधि लक्ष्मियां जो है वो एक विष्णु की सेवा में, सेवा करने में तत्पर रहती है। और इतना ऐश्वर्य का उपभोग विष्णु करते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे ऐश्वर्य का त्याग करके, इच्छा से त्याग करके वो वृंदावन में बिना भगवान के रूप लेने के लिए आते हैं। वैकुंठ का ऐश्वर्य त्याग करके, गोपियों का चोरी करके छाछ पीने के लिए वो पृथ्वी पर आते हैं। इसका मतलब जो गोपियों का छाछ है उसमें ज़्यादा आनंद होगा ना ऐश्वर्य से, नहीं तो क्यों आएंगे आप? अगर किस 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 चीज़ की आप त्याग करते हो, जब आपको कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो आप छोटी चीज़ छोड़ देते हो और उसका त्याग करते हो और बड़ी चीज़ प्राप्त करने के जाते हो, क्योंकि बड़ी चीज़ के सामने वो कुछ भी नहीं है। तभी आप त्याग करने की हिम्मत कर सकते हो, व्हेन यू आर श्योर ऑफ गेटिंग बेटर थिंग। कोई आपको अच्छी साड़ी फेंक देनी है, समझो डिस्कार्ड करनी है, तो कब करेंगे आप? जब उससे बढ़िया साड़ी लाके देगा पति, तो बोलेंगे एक कंडीशन में दूंगा बढ़िया साड़ी, उसको पहले फेंक दो, तो तुरंत फेंक देगी वो। और बिना साड़ी लाए बोलेंगे फेंक दो, तो फेंक देगी वो, नहीं देगी। तो त्याग करने के लिए कुछ उच्च वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए। तो अगर वैकुंठ छोड़कर भगवान चोरी का छाछ पीने में आते हैं पीने के लिए, तो इसका मतलब वो चोरी वाले छाछ में कितना आनंद होगा। यहाँ तक माँ उनको खिलाती है मक्खन छाछ जो चाहिए खा ले, बाहर जाकर चोरी मत कर, लेकिन मैया बस हो गया अभी उल्टी होगी इतना तक खिलाती है वो, और उसके बाद भी तुरंत जाके चोरी करके खाते हैं। इसलिए मैया को विश्वास नहीं होता है। तो भगवान ने बार बार बताया है, बार बार बताया है कि मुझे वैकुंठ के ऐश्वर्य में इतना आनंद नहीं आता है जितने गोपियों के मक्खन में आता है। ऐसा भगवान का प्रेम भाव है। इसका अर्थ ही होता है कि माधुर्य भाव ऐश्वर्य भाव से करोड़ों करोड़ों गुना अनंत गुना श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ऐश्वर्य भाव को खुद त्याग कर साधारण व्यक्ति बनकर चोरी चकोट के करके खा जाते हैं। ये वृंदावन धाम की महिमा है। तो कौन से रस में भगवान वृंदावन में रहते हैं, या कौन से रस का आस्वादन करते हैं? शांत रस का आस्वादन करते हैं, दास्य रस का करते हैं, वात्सल्य का करते हैं, माधुर्य का करते हैं, साख्य रस का भी करते हैं। इन पांचों रसों में भगवान प्रेम का आस्वादन करने के लिए वृंदावन में आते हैं। और वृंदावन कैसा है? वृंदावन प्रेम से भरा नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, प्रेम की बातें हो रही है, वृंदावन तो प्रेम से भरा है। नहीं, वृंदावन साक्षात प्रेम है। एक प्रेम से भरा होना होता है और एक साक्षात प्रेम होना होता है। मूर्तिमान प्रेम है वृंदावन, इसका प्रमाण भागवत में दिया है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी च विक्षा सीद उत्तमा प्रीति राम माधवोर नृपः। कि जब श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी ने उपानंद के आदेश पर जब नंद बाबा को आदेश दिया कि यहाँ से निकलो, अभी ये जगह बहुत असुरक्षित है, गोकुल अभी बहुत कंस के नगरी के पास में है, बहुत इनसिक्योर है, यहाँ से निकलो और महावन और नंदगांव के बीच में जो वृंदावन है वहाँ जाओ और वहाँ हम लोग निवास करेंगे, अपने आप को रीशेड्यूल क्या कहते हैं लोकेट करेंगे। तो सब लोग उसको पैकिंग करके निकले हुए हैं। और जब पहली बार गोकुल से निकलने के बाद छठीकरा होते हुए आगे जाते हुए श्री कृष्ण बलराम ने वृंदावन का दर्शन किया, तो उस सुंदर वृंदावन जो गोवर्धन पर्वत यमुना नदी से संपृक्त था उसको देखकर कृष्ण बलराम के हृदय में उत्तमा प्रीति का उदय हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? जो स्वयं प्रेम के मूर्ति है, विश्व भर को लोगों को प्रेम देने वाले हैं, उनके हृदय में प्रेम जागृत करने की शक्ति इस वृंदावन में है। जो सबको प्रेम देते हैं उनके हृदय में उत्तमा प्रीति जागृत करने की शक्ति इस वृंदावन में है। और आचार्य लोग इसका भी और भेद समझाते हैं, रहस्य बोला उत्तमा कौन है। उत्तमा, ये उत्तमा राजा रानी का एक अनेक नामों से एक नाम है, और राजा रानी जो करती है उसको भी उत्तमा प्रीति कहा गया है। तो वृंदावन धाम कृष्ण को इतना आकर्षक प्रेम देने वाला क्यों लगा? क्योंकि राधा रानी का अधिष्ठान है वहां पर, राधा रानी का वो राज्य है, अधिराज्य राधा रानी का है, वहां पर उनकी ही चलती है, वहां पर कोई जय श्री कृष्ण बोलने की हिम्मत नहीं करता है। मथुरा उतरने के बाद जो शुरू होता है राधे राधे, वापस स्टेशन तक मथुरा राधे राधे चलता है, बीच में कोई कृष्ण कृष्ण करने वाला है ही नहीं उधर, वो सभी नाथ द्वार में आप कहीं जाओ, द्वारका में जाओ, जय श्री कृष्ण वहां पर होता है। वृंदावन में पूरा राधा रानी का राज्य है, कोई कृष्ण का नाम लेता नहीं है। उसके कई कारण है, एक कारण राधा रानी उन सम्राज्ञी है नंबर वन, दूसरा ये है कि कृष्ण को पुकारने के बाद में वो सुनने कहाँ आते हैं, वो तो वहां पर अलग मूड में रहते हैं, उनको पुकारने वाला की पुकार सुनते ही नहीं है वो, लेकिन कोई राधा रानी को पुकारता तुरंत देखता है कि मेरे राधा रानी को कौन पुकार रहा है, इसलिए उनको पुकारने के परिश्रम में कौन बैठेगा, बोले शॉर्टकट पकड़ो ताकि वो भी देखे और वो भी देखे, दोनों देखे, इसे राधा रानी को ही पुकारते हैं, है ना। तो कृष्ण स्वयं प्रेम सिंधु है, प्रेम स्वरूप है, प्रेम देव हैं, ऐसे कृष्ण को भी प्रेम और सुख देने वाला श्री वृंदावन धाम है। और उत्तमा राधा रानी का एक नाम है, और उत्तमा राधा के प्रेम का प्रकट स्वरूप श्री वृंदावन है जिसमें गोवर्धन और यमुना है। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच।